पृष्ठ संख्या 220 शीर्षक है अशुभ की वास्तविकता। हम देख चुके हैं कि सर्वेश्वरवादी मत तथा कुछ दार्शनिकों के अनुसार अशुभ को मिथ्या माना जाता है। दूसरी ओर हम यह भी जानते हैं कि अशुभ एक अनुभूत सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। फिर इन दोनों में किसे सत्य माना जाए? क्या सचमुच अशुभ का कोई अस्तित्व नहीं है या अशुभ का बहुत अधिक अस्तित्व है, वह वास्तविक है? दूसरे शब्दों में क्या अशुभ का अस्तित्व अस्वीकृत किया जा सकता है? इस प्रश्न के पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए तर्कों का विवेचन अपेक्षित है, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। शीर्षक है पक्ष में तर्क। इसमें पहला बिंदु है अद्वैत वेदांतियों का तर्क। अद्वैत वेदांती जगत की वास्तविक सत्ता नहीं मानते, इसलिए जगत में व्यवहारिक जीवन में दुख की अनुभूति अज्ञान के कारण ही होती है। शुद्ध सत्ता तो दुख सुख के परे रहती है। अज्ञान या माया का पर्दा हटने पर ही जीव को ज्ञान होता है। मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात दुख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अतः अशुभ का अस्तित्व नहीं है। अब बिंदु दूसरा है संत अगस्तीन तथा लाइबनीज का तर्क। इनके अनुसार अंश से पूर्ण की व्याख्या नहीं की जा सकती। ईश्वर ने विश्व की रचना किसी महान उद्देश्य को लेकर की है। इस विशाल विश्व में अशुभ आंशिक दृष्टिकोण का फल है। बच्चों को सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड देना अशुभ कहा जा सकता है, परंतु उसके संपूर्ण जीवन को यदि सामने रखा जाए तो यह दंड अशुभ नहीं माना जा सकता। वह शुभ का ही रूप है। वास्तव में अशुभ का अस्तित्व नहीं है। बिंदु तीसरा है हेगल प्रभृति प्रत्ययवादियों के तर्क। इन विचारकों के अनुसार कोई वस्तु वास्तव में बुरी और अशुभ नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि एक वस्तु शेष वस्तुओं से असंबद्ध होने पर अर्थहीन, अशुभ एवं असुंदर मालूम हो सकती है, जब वही संपूर्ण के संदर्भ में देखी जाएगी तो अर्थपूर्ण तथा शुभ प्रतीत होगी। हेगल ने कहा है कि अशुभ तो हमारी संकुचित और अपूर्ण दृष्टि का परिणाम है। अशुभ के द्वारा ही हम शुभ पर पहुँचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि निर्माण में अशुभ शुभ हो जाता है, अथवा किसी वृत्ति में अशुभ उस वृत्तखंड या चाप के समान है जो पूर्ण होने पर अच्छा हो जाता है। संकुचित दृष्टि देखने पर माता का बच्चे को कड़वी दवा पिलाना अशुभ है, परंतु उसके स्वस्थ होने पर वही शुभ हो जाता है। अतः वास्तविक रूप में अशुभ का अस्तित्व नहीं सिद्ध होता। बिंदु चौथा है निरपेक्ष सत्तावादी तर्क। ऐसे दार्शनिक परम सत्ता को निरपेक्ष मानते हैं। उस निरपेक्ष सत्ता में अशुभ देखना केवल प्रतिभास या अपीयरेंस मात्र है। शंकर और ब्रैडले का दर्शन इसका स्पष्ट उदाहरण है। उनके अनुसार अशुभ भ्रम या प्रतिभास या मिथ्या दृष्टि है, अशुभ वास्तविक नहीं है। पृष्ठ संख्या 221 शीर्षक है आलोचना अथवा विपक्ष में तर्क। ऊपर के विभिन्न तर्कों से यही सिद्ध होता है कि अशुभ का अस्तित्व वास्तविक नहीं है, परंतु इन तर्कों का प्रत्याख्यान सरलतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें पहला है अनुभव द्वारा। किसी वस्तु के अस्तित्व की वास्तविकता के लिए साक्षात प्रमाण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं माना जा सकता। चूंकि विश्व के समस्त जीवों को अशुभ का साक्षात अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है, इसलिए अशुभ की वास्तविक सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है। यदि यह कहा जाए कि हमारा अनुभव आभास मात्र, मिथ्या या भ्रम है, तो इसके उत्तर में भी यह कहा जा सकता है कि क्या भ्रम को अशुभ नहीं माना जा सकता। चूंकि अशुभ अनुभूत तथ्य है, चाहे इसका नामकरण भ्रम, अज्ञान अथवा माया और मिथ्या ही क्यों न किया जाए, अतः अशुभ की वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ती है। अब बिंदु दूसरा है मैक्टागार्ड के तर्कों द्वारा। वास्तव में मैक्टागार्ड ने अशुभ की वास्तविकता को बड़ी ही सफलतापूर्वक सिद्ध किया है, जिससे उपयुक्त तर्कों का खंडन हो जाता है। इसमें बिंदु अ है, यदि अशुभ को अशुभ रूप में नहीं जाना जा सकता तो शुभ को शुभ के रूप में कैसे जाना जा सकता है। मैक्टागार्ड का कहना है कि जो यह कहा जाता है कि मनुष्य अशुभ को अशुभ के रूप में नहीं जान सकता, इसी तर्क के आधार पर यह भी तो कहा जा सकता है कि मनुष्य शुभ को भी वास्तविक शुभ के रूप में नहीं जान सकता। जिस बुद्धि और तर्क के आधार पर हम अशुभ की वास्तविकता स्वीकार करते हैं, उसी बुद्धि के आधार पर हम अशुभ की वास्तविकता भी स्वीकार कर सकते हैं। अतः यदि मनुष्य अशुभ की वास्तविकता को नहीं जान सकता तो वह शुभ की वास्तविकता को भी नहीं जान सकता। अब बिंदु ब है संदेहवादी की शरण में। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वस्तुतः मनुष्य में अशुभ की वास्तविकता स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, तो नैतिक संदेहवाद की शरण में अवश्य जाना होगा, जो सामान्य जीव तक के लिए भी घातक सिद्ध होगा। इसलिए अशुभ की वास्तविकता न मानने पर हम शुभ के ज्ञान से भी वंचित हो जाएंगे। अतः निष्कर्ष यही है कि हमें अशुभ की वास्तविकता को स्वीकार करना ही होगा। बिंदु तीसरा है रहस्यवादी या ईश्वर भक्त के अनुभव द्वारा। अशुभ की वास्तविकता को रहस्यवादी अथवा ईश्वर भक्तों के अनुभव के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। भक्त के अनुसार सृष्टि ईश्वर का खेल है, उसके रहस्य को समझना कठिन है। आधुनिक युग के मान्य ईश्वर दृष्टा या अवतार की संज्ञा से अभिहित किए जाने वाले श्री राम कृष्ण कहते हैं, सभी ईश्वर के अधीन है, उन्हीं की लीला है, उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है, छोटी बड़ी, भली बुरी, मजबूत कमजोर, अच्छे आदमी बुरे आदमी, यह सब उन्हीं की माया है, उन्हीं का खेल है। देखो न, बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है स्वाधीन है। यह भ्रम वही रख देते हैं, नहीं तो पाप की वृद्धि होती। पाप से कोई नहीं डरता, न पाप का फल मिलता। जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव जानते हो क्या है? मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं गृह हूँ, तुम गृहस्थ। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाते हो वैसा चलता हूँ, जैसा कहते हो वैसा कहता हूँ। पृष्ठ संख्या 222। तर्क करना अच्छा नहीं। इस प्रकार रहस्यवादी के द्वारा अशुभ का पूर्ण समाधान भी हो जाता है और अशुभ की वास्तविकता भी सिद्ध हो जाती है। शर्त इतनी ही है कि इस विषय में उनकी अनुभूतियों में विश्वास करना होगा। तर्क करना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से अशुभ की समस्या गहन एवं जटिल हो जाती है। यदि रहस्यवादी अथवा ईश्वरवादी की मान्यता को स्वीकार किया जाए तो तार्किक आधार पर उनकी सभी मान्यताएं विनष्ट हो जाती हैं। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और उसके शुभत्व में अशुभ की मान्यता के कारण कोई सामंजस्य नहीं होता। सचमुच ईश्वरवादियों के लिए अशुभ की स्थापना एक पहेली बन जाती है। इसके समाधान के लिए ईश्वरवादी अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं जिनकी विवेचना आवश्यक है। अब अगला शीर्षक है ईश्वरवादियों द्वारा अशुभ की समस्या का समाधान। इसमें पहला है अशुभ का अस्तित्व नहीं है। प्रोफेसर डी एम एडवर्ड के अनुसार ईश्वरवादी अशुभ के रहस्य की व्याख्या के लिए अनेक सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। उनमें से एक मत यह भी है कि अशुभ का अस्तित्व ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक एवं नैतिक दोनों अशुभ उच्च दृष्टिकोण के आधार पर अस्तित्ववान नहीं कहे जा सकते। वास्तव में यह विश्व पूर्णतया शुभ है। अगस्टीन के अनुसार विश्व में जो कुछ अस्तित्ववान है वह शुभ है, अशुभ अनअस्तित्ववान और भ्रम है। सर्वेश्वरवादी और अद्वैतवादी मत के अनुसार यदि जगत एकात्म रूप अद्वैत है तो उसमें अशुभ का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। स्पिनोजा का अनंत द्रव्य जो कि चरम अंतिम सत्ता है वह शुभ और अशुभ के परे है। शुभ और अशुभ केवल आत्मगत विचार है। हेगल के अनुसार भी अशुभ असत्य है। आंशिक दृष्टि से उसका अस्तित्व है, परंतु पूर्ण की दृष्टि से अशुभ सत्य नहीं है। संकुचित दृष्टि से जो अशुभ प्रतीत होता है वह वास्तव में निर्माण में शुभ होता है। लाइबनीज का विश्व के विषय में दृष्टिकोण स्पिनोजा और हेगल से भिन्न है। वे यह नहीं कहते कि अशुभ मिथ्या है। लाइबनीज के अनुसार अशुभ अभाव या दोष के कारण है। जीव की अपूर्णता में अशुभ दृष्टिगत होता है, परंतु बृहद दृष्टिकोण से पूर्णता में अशुभ का अस्तित्व नहीं है। इसलिए लाइबनीज ने कहा है कि हम जिस विश्व में रहते हैं वह सभी संभव विश्व में सबसे अच्छा है, परंतु कल्पनात्मक रूप में अच्छा नहीं है। शीर्षक है आलोचना। अशुभ के भावात्मक पक्ष की उपेक्षा की गई है। उपर्युक्त सभी मत जो विभिन्न दार्शनिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और जिनके अनुसार यह माना गया है कि अशुभ शुभ का अभाव है या अशुभ आंशिक दृष्टिकोण है, इसलिए अशुभ का अस्तित्व नहीं है आदि जीवन के अनुभवों की व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। वह व्यक्ति जो घोर यातना से संतुष्ट हो उससे यह कहने पर कि दुख कुछ नहीं मिथ्या है या अपनी अपूर्णता है, उसे कुछ भी आराम नहीं होगा। दुख या दर्द ही पूर्ण सत्य है जिसका वह अनुभव करता है। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में, जो दुख का अनुभव करता है उसके लिए वह विकट सत्य है, और दार्शनिक प्रज्ञा का उच्च दृष्टिकोण असत्य है। यदि वह दुख के अनुभूत सत्य की उपेक्षा करता है, वे तथ्य जो अपने आप जीवित चेतना में वर्तमान हैं उनकी ओर से आँख बंद कर लेने पर निश्चित ही दार्शनिक प्रतिभा का आगमन नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 223। एडवर्ड का यह भी कहना है कि इन मतों से नैतिक अशुभ या पाप की व्याख्या तो और भी कठिन प्रतीत होती है। यदि पाप अशुभ के लिए सहायक है तो मनुष्य पाप करता जाएगा और अंत में समाज और विश्व की क्या दशा होगी यह कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त लोगों के नैतिक कार्यों का क्या मूल्य रह जाएगा? अतः उच्चता की दृष्टि से अशुभ का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिंदु दूसरा है, शुभ और अशुभ का स्वतंत्र एवं सह अस्तित्व। हम देख चुके हैं कि द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार शुभ और अशुभ का स्वतंत्र और सह अस्तित्व स्वीकार किया गया है। कुछ ईश्वरवादियों के अनुसार भी यह मत स्वीकार किया गया है। इस मत के अनुसार ईश्वर ने अशुभ को उत्पन्न नहीं किया है, अतः यह कहा जा सकता है कि अशुभ के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं। पारसी धर्म में अहुर्मज़दा और अहरमान, सांख्य में प्रकृति और पुरुष, प्लेटो के अनुसार जड़ और चेतन, अरस्तु के अनुसार विषय वस्तु और आकार, ईश्वर और शैतान, नेकी तथा बदी और देव तथा राक्षस आदि दो विभिन्न सत्ताएं हैं और इनका साथ साथ रहना भी निश्चित है। एक शुभ का प्रतीक है तो दूसरा अशुभ का, इसलिए विश्व में दिन और रात, प्रकाश और अंधकार, पाप और पुण्य, सुख और दुख का यथार्थ और नित्य अस्तित्व है। इस मत के अनुसार ईश्वर अशुभ के दोषों से वंचित रह जाता है। अगला शीर्षक है आलोचना। यदि उपयुक्त तर्क सही मान लिया जाए तो निश्चित ही ईश्वर अशुभ के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसी दशा में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता समाप्त हो जाती है। ऐसा ईश्वर एक सीमित ईश्वर के रूप में ही रह जाता है, जिसे ईश्वर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यदि ईश्वर स्वयं अपने से सीमित होता तो उसका ईश्वरत्व रह जाता, परंतु वह तो एक समकक्ष दूसरी सत्ता से सीमित हो जाता है, अतः वह ईश्वर नहीं है। यदि यह कहा जाए कि दोनों सत्ताएं अपरिमित और असीम हैं, जो जगत के शुभ और अशुभ कार्यों को परिचालित करती हैं, तो एडवर्ड के शब्दों में यह श्रम विभाजन का नियम इस विषय में लागू नहीं होगा और न इससे अशुभ की समस्या हल हो सकती है। बिंदु तीसरा है, अशुभ शुभ के सहायक और साधन के रूप में है। अनुभव से यह प्रतीत होता है कि अशुभ का अनुशासन और शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व है। जीवन की बहुत सी कठिनाइयाँ और दुख शुभ की प्राप्ति में सहायक और साधन के रूप में काम आते हैं। गैलवे के अनुसार जीव की दुख की अनुभूतियाँ ही उसे अपनी रक्षा और विकास के लिए चौकन्ना करती है। भूख की पीड़ा से व्यथित होने पर ही मनुष्य और पशु भोजन की तलाश करते हैं और फिर उसे ग्रहण करके सुखानुभूत प्राप्त करते हैं। यदि मनुष्य में अभाव की स्थिति न उत्पन्न हो तो वह आत्म विकास के पथ पर अग्रसर न हो। दुख और अभाव की अनुपस्थिति में प्रगति का कोई अर्थ ही नहीं होगा। अस्तित्व के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। जीवन संगठन और सुरक्षा के लिए अशुभ वरदान स्वरूप है। मृत्यु सबसे प्रबल प्राकृतिक अशुभ है, परंतु जीवन के लिए वह भी आवश्यक है। इसके अभाव में जीवन की व्यवहारिकता समाप्त हो जाएगी। व्यक्तिगत जीवन के लिए मृत्यु कितनी भयानक क्यों न हो, परंतु जात के अभ्युदय में और विकास की प्रक्रिया में यह अत्यंत ही सहायक है। पृष्ठ संख्या 224। यह ठीक ही कहा गया है कि मृत्यु के अभाव में भौतिक जीवन की अमरता मृत्यु से अधिक भयानक सिद्ध होगी। अतः ईश्वर ने अशुभ की उत्पत्ति अवश्य की है, परंतु अशुभ की साध्य नहीं, बल्कि महान शुभ के लिए साधन स्वरूप है। इस व्याख्या से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ न उत्पन्न करे तो निश्चय ही अशुभ शुभ की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड ने ठीक ही कहा है कि पूर्ण सुख की प्राप्ति की कामना सुखवादी मनोवृत्ति पर आधारित है, परंतु दुख के अभाव में सुख की कल्पना निराधार है। ऐसा स्वर्ग जहाँ कंटक विहीन गुलाब के फूल हों, जहाँ दुख विहीन जीवन की मधुरता हो, वह मनुष्य को सारहीन प्रतीत होगा और वहाँ मनुष्य शायद ही लंबी अवधि तक रहकर उसका उपभोग कर सकेगा। अतः अशुभ हमारे भौतिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सहायक सिद्ध होता है। यह प्रेरणा का स्रोत है। शीर्षक है आलोचना। इसमें बिंदु अ है, प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ को जन्म देता है। यदि कहा जाए कि अशुभ मानव जीवन में साधन का काम करता है तो यह निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि महामारी बाढ़ और अकाल के कारण मनुष्य अभावग्रस्त होता है और नैतिक अशुभ तथा पाप यथा चोरी डकैती के लिए बाध्य होता है। फिर अशुभ को शुभ का साधन कैसे कहा जा सकता है? बिंदु ब है, अशुभ से हम अधार्मिक बनते हैं। जीवन की कठिनाइयों और दुखों से मनुष्य निराश होकर अध्यात्म की ओर न बढ़कर आत्महत्या कर सकता है, या निष्क्रिय होकर बैठ सकता है, या अनैतिक कर्म कर सकता है। बिंदु स है, अशुभ जैसा कठोर साधन क्यों? शुभ की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने अनेक कठोरताओं और दुखों को साधन के रूप में क्यों उत्पन्न किया? क्या वह सर्वशक्तिमान होते हुए अन्य सरल और सहज साधनों को नहीं उत्पन्न कर सकता था? बिंदु द है, ईश्वर को साधन की क्या आवश्यकता? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे शुभ की प्राप्ति के लिए अशुभ जैसे साधन की क्या आवश्यकता थी? यदि उसे साधन उपेक्षित है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं कहा जा सकता। बिंदु यह है, मील द्वारा आलोचना। यह तो माना जा सकता है कि मृत्यु से जात का उद्य विकास होता है, परंतु व्यक्तिगत मृत्यु से कौन सा शुभ उत्पन्न होगा? उनकी आंतरिक व्यथा का क्या परिणाम होगा? मील का कहना है कि यदि अशुभ से शुभ उत्पन्न होता है तो अशुभ भी उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक अशुभ जहाँ एक ओर नैतिक शुभ उत्पन्न करता है, वहीं कभी कभी नैतिक अशुभ भी उत्पन्न करता है। यही नहीं, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता तो सुख दुख में सही अनुपात होता, परंतु देखा जाता है कि पापी सुखी होता है और नैतिक व्यक्ति प्रायः दुखी रहता है। बिंदु र है, लेयर्ड द्वारा आलोचना। लेयर्ड का कहना है कि दुख से कितनी मात्रा में सुख मिल सकता है, यह निश्चय नहीं है। अतः निश्चित है कि अशुभ से शुभ उत्पन्न नहीं होता। अब बिंदु चौथा है, अशुभ शुभ की पृष्ठभूमि के रूप में। ईश्वरवादी अशुभ की समस्या के समाधान के लिए यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यदि अशुभ न हो तो शुभ की कल्पना ही नहीं की जा सकती, या यों कहें कि अशुभ शुभ का पूरक है। पृष्ठ संख्या 225। शुभ का मूल्य अशुभ के कारण ही संभव है। यदि दुख न होता तो सुख कैसे संभव होता? प्रकाश के लिए अंधकार, पुण्य के लिए पाप, ज्ञान के लिए अज्ञान, सत के लिए असत और प्रेम के लिए शत्रुता आदि पृष्ठभूमि का काम करते हैं। अर्थात अशुभ के आधार पर ही शुभ का अर्थ है और महत्व प्रकट होता है। संत अगस्टीन और C.E.M. जोड़ ने इसका समर्थन किया है। अगस्टीन के अनुसार शुभ की सार्थकता अशुभ से संभव है, और जोड़ के अनुसार शुभ के लिए अशुभ आवश्यक है। शीर्षक है आलोचना। ईश्वरवादियों की यह मान्यता निर्दोष नहीं कही जा सकती। क्या आवश्यक है कि सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य शारीरिक विकारों से ग्रसित हो? यह आवश्यक नहीं कि अशुभ की उपस्थिति में ही शुभ का ज्ञान हो। यदि सुख के अभाव में दुख का बोध हो सकता है तो दुख के अभाव में सुख का बोध क्यों नहीं हो सकता? यदि शुभ के लिए अशुभ आवश्यक ही है तो फिर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का क्या अर्थ? क्योंकि ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान होता तो बिना अशुभ के शुभ की स्थापना कर सकता था। अब बिंदु पांचवा है, अशुभ से पूर्ण विश्व ही अच्छा है। लाइबनीज के अनुसार यही विश्व संभावित विश्वों में सबसे अच्छा है। इसमें अशुभ आंशिक और सीमित दृष्टिकोण से तो विरोधी प्रतीत होता है, परंतु संपूर्णता की दृष्टि से समन्वय का काम करता है। प्रगति, विकास, संगठन आदि शुभ प्रतीत होते हैं, परंतु इसके विरोधी के रूप के बिना इसका शुभत्व नहीं रह जाता। अशुभ के कारण ही संगठित, प्रगतिशील एवं सुंदर विश्व विद्यमान है। अशुभ के कारण ही दया, क्षमा, सहानुभूति और प्रेम का महत्व है। अशुभ न होता तो यह सर्वश्रेष्ठ विश्व भी संभव न होता। आलोचना। ईश्वरवादियों का उपयुक्त तर्क यह सिद्ध करता है कि विश्व में जितना ही अधिक अशुभ होगा उतना ही विश्व शुभमय होगा। अतः इस तर्क से अशुभ की समस्या का जितना समाधान नहीं होता उससे भी अधिक उसका रूप जटिल हो जाता है। अशुभ की बहुलता से ईश्वर की सीमितता प्रकट होती है, फिर सीमित ईश्वर को ईश्वर की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब बिंदु छठवां है, अशुभ शुभ के मार्ग में एक कदम है। हेगेल आदि विचारकों के अनुसार कोई भी वस्तु बिल्कुल बुरी नहीं कही जा सकती। एक वस्तु अन्य वस्तुओं से असंबद्ध होने के कारण असुंदर, निरर्थक और अशुभ प्रतीत होती है, तथा वही जब अन्य वस्तुओं के साथ संपूर्णता के रूप में देखी जाती है तो सुंदर और शुभ लगती है। हेगेल का कहना है कि अशुभ हमारी सीमित या संकुचित दृष्टिकोण का फल है। वास्तव में अशुभ शुभ के मार्ग में एक कदम है, जैसे वृत्त के निर्माण में एक अर्धवृत्त या चाप असुंदर लगता है, परंतु वृत्त की पूर्णता में वही सुंदर प्रतीत होता है। इसलिए कहा गया है कि निर्माण में अशुभ शुभ है या अशुभ एक वृत्त का चाप है, तब वह पूर्ण हो जाता है तो वही शुभ या सुंदर हो जाता है। शीर्षक है आलोचना। यह समाधान भविष्य की प्राकल्पना पर आधारित है। हेगेल की बात तभी मानी जा सकती है जब भविष्य में पूर्णता या शुभ का निश्चय हो। पृष्ठ संख्या 226। हम वर्तमान तथ्यों के आधार पर ही परिकल्पना कर सकते हैं, परंतु भविष्य की प्राक कल्पना के आधार पर वर्तमान तथ्यों की सिद्धि नहीं कर सकते। मनुष्य को वर्तमान में तो अतीव कष्ट का बोध होता है, उसकी तुलना में भविष्य के शुभ की कल्पना निरर्थक प्रतीत होती है। बिंदु सातवां है, अशुभ जीवों के कर्मों के अनुसार दंड स्वरूप है। ईश्वर ने जीव को उत्पन्न करके आशा की कि वह नैतिक नियमों का पालन करेगा, शुभ कर्म संपादित करेगा, परंतु मनुष्य के नियमों के विरुद्ध आचरण करके पाप की वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मानव के दुष्कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर ने प्राकृतिक अशुभ का निर्माण किया। यही कारण है कि बाढ़, अकाल, भूकंप आदि समय समय पर मनुष्य को पीड़ित करते रहते हैं। भारतीय मत के अनुसार ईश्वर सृष्टि को कर्म के नियम के अनुशासन में रखता है, उसमें ईश्वर का हाथ नहीं रहता। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अतः अशुभ मनुष्य के कर्मों का फल है, न कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया है। आलोचना। उपर्युक्त समाधान भी तर्क संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यदि ईश्वर ने प्राकृतिक अशुभ को दंड स्वरूप उत्पन्न किया है तो उसे उन्हीं लोगों को दंड मिलना चाहिए जो पापी या दुराचारी हैं। क्या बाढ़ और अकाल में निरीह बच्चे, साधु संत, कीड़े मकोड़े आदि कष्ट नहीं पाते? अतः प्राकृतिक अशुभ दंड स्वरूप नहीं प्रतीत होता। यदि इससे बचने के लिए कहा जाए कि मनुष्य को जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फल के कारण दुख भोगना पड़ता है तो यह भी तर्क संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महामारी या अन्य उपद्रवों में साधु संत, ईमानदार एवं भले व्यक्ति भी तो कष्ट पाते हैं। और यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या साधु और भक्त पुरुषों को वह कष्ट से मुक्त नहीं कर सकता? दूसरे, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता कर्म के नियम के द्वारा भी खंडित होती है। यदि कर्म का नियम ही प्रधान है तो ईश्वर की क्या आवश्यकता? अब बिंदु आठवां है, नैतिक अशुभ मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। ईश्वरवादियों का कहना है कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की है। मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक है। वह अपनी इच्छा शक्ति से चाहे नैतिक कर्म करे, चाहे अनैतिक। यदि वह चाहे तो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग कर सकता है और चाहे तो उसका दुरुपयोग कर सकता है। अतः देखा जाता है कि अधिकतर लोग अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके अशुभ को उत्पन्न करते हैं। चोरी, डकैती, झूठ, हत्या आदि व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है। आलोचना। इसमें बिंदु अ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो क्या वह ऐसा नहीं कर सकता था कि मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग न करता? बिंदु ब है, ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है। यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो क्या वह नहीं जानता था कि यदि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की जाएगी तो वह उसका दुरुपयोग करेगा? यदि वह जानता था तो जानबूझकर मनुष्य के मन में पाप, घृणा, ईर्ष्या आदि की इच्छाएं क्यों उत्पन्न की? यदि उसे पूर्व ज्ञान था तो फिर अशुभ का उत्तरदायित्व ईश्वर पर है। और यदि वह नहीं जानता था तो सर्वज्ञ नहीं है। बिंदु स है, प्राकृतिक अशुभ से नैतिक अशुभ। निश्चित रूप से यह भी नहीं कहा जा सकता कि नैतिक अशुभ मनुष्य द्वारा स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग के कारण ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक अशुभ के कारण भी मनुष्य नैतिक अशुभ उत्पन्न करता है। क्या यह किसी से छिपा हुआ है कि अकाल और बाढ़ से पीड़ित होकर व्यक्ति चोरी, झूठ और हत्या करने लगता है? पृष्ठ संख्या 227। अब बिंदु नौवां है, श्री अरविंद द्वारा अशुभ की समस्या का समाधान। इसके अंतर्गत बिंदु अ है, विकास क्रम में अशुभ की उत्पत्ति अहम भावना के कारण। श्री अरविंद पाश्चात्य एवं प्राच्य प्रचलित मतों से भिन्न और तर्क संगत व्याख्या अशुभ की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार यह संसार अशुभ नहीं है, क्योंकि इसके मूल में सब कुछ सच्चिदानंद है। जब आत्म प्रज्ञ एकता में बाधा उत्पन्न होती है, अशुभ का अनुप्रवेश उसी दिशा में केवल संभव है, परंतु केवल पृथकता से भी अशुभ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जब तक वह पृथकता अहम भावना के साथ सम्मिलित न हो जाए, निष्कर्ष यह है कि अहम भावना के कारण ही अशुभ की उत्पत्ति होती है। बिंदु ब है, प्रेत पिशाच आदि अशुभ शक्तियों के कारण अशुभ हैं। श्री अरविंद के अनुसार विश्व में कुछ सूक्ष्म और प्रछन्न शक्तियां हैं, जिनका स्वभाव ही अज्ञान, अंधकार और अशुभ से संबद्ध है। इन्हीं के कारण विश्व में अशुभ की उत्पत्ति होती है। बिंदु स है, अशुभ का भावात्मक अस्तित्व नहीं है। तीसरे तर्क के आधार पर श्री अरविंद कहते हैं कि अशुभ का कोई भावात्मक अस्तित्व नहीं है। विकास की विशेष दशा में, विशेष परिस्थिति में पड़े जीवों के लिए अशुभ का अस्तित्व हुआ करता है। इनको निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता है, अशुभ सापेक्ष है। जगत के मूल में आनंद ही है, जगत अशुभमय नहीं है। बिंदु द है, अन्य तर्क। श्री अरविंद अशुभ के समाधान के लिए कई अन्य तर्क भी देते हैं, जैसे दुख सीमा और सांत्वना से उत्पन्न अस्थायी दशा है, आनंद निरपेक्ष है, दुख सुख आपेक्ष, सुख दुख अपूर्ण आत्माओं की अनुचित प्रतिक्रियाएं हैं और अभ्यास से प्रतिक्रियाएं बदली जा सकती हैं। सुख स्वाभाविक होने के कारण हमारा ध्यान दुख की ओर अधिक जाता है आदि। शीर्षक है आलोचना। बिंदु अ है, श्री अरविंद आधुनिक भारत के महान चिंतक और मनीषी माने जाते हैं। निसंदेह उन्होंने अशुभ की समस्या का समाधान नवीन और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है, परंतु पूर्ण समाधान फिर भी संभव नहीं प्रतीत होता। विकास क्रम में अशुभ अहम भावना के कारण उत्पन्न होता है। यदि अहम भावना इतना प्रबल है कि स्वतः उत्पन्न हो जाता है और जीवन को त्रस्त करता रहता है, तो इसकी उत्पत्ति को ईश्वर ने क्यों नहीं रोक दिया? या तो वह एक स्वतंत्र शक्ति है, या ईश्वर ने जानबूझकर उसे उत्पन्न होने दिया। दोनों ही रूपों में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता समाप्त होती है। बिंदु ब है, दूसरे यदि प्रेत और पिशाच जैसी अदृश्य शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं जो जीवन को जीने योग्य नहीं रहने देती, तो उपयुक्त आक्षेप पुनः ईश्वर के ऊपर लगाया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 228। बिंदु स है, अशुभ को श्री अरविंद अभावात्मक कहकर टाल देते हैं, परंतु हमारा अनुभव तो यह नहीं बताता कि अशुभ बंध्या पुत्र की तरह या खरगोश की सिंह के समान है। बिंदु द है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर भट्टाचार्य जी ने बड़ी कुशलतापूर्वक श्री अरविंद के अन्य तर्कों का प्रत्याख्यान किया है, जैसे दुख से अधिक सुख कैसे है। श्री अरविंद ने इसे गहराई से नहीं समझा कि अधिकांश भारतीय मनुष्यों ने मानव जीवन को दुखमय बताया है। सारा भारतीय चिंतन दुख के अपार सागर को देखकर प्रवाहित हुआ है। दूसरे, यदि श्री अरविंद के तर्क को स्वीकार किया जाए तो नैतिक समस्या का हल संभव नहीं जान पड़ता। यदि व्यक्ति अदृश्य शक्तियों के ही प्रभाव से अनैतिक कार्य करता है तो नैतिकता का उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा। अब अगला शीर्षक है निष्कर्ष। ईश्वरवादियों द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों को देखने से यही प्रतीत होता है कि इन तर्कों द्वारा अशुभ की समस्या का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। धर्म के क्षेत्र में यह ऐसी कठिन समस्या है जिसका समाधान तर्कों द्वारा नहीं किया जा सकता। यदि धर्म का आधार विश्वास है तो हमें ईश्वर दृष्टा या रहस्यवादियों के कथनों में विश्वास करना होगा। धार्मिक व्यक्ति अशुभ को वरदान मानता है, उसकी ईश्वर में अटूट आस्था होती है, उसके लिए अशुभ अशुभ नहीं रह जाता। वह तो अशुभ को आत्मविश्वास का अमोघ साधन मानता है। अतः अशुभ का अर्थ दार्शनिक चिंतन द्वारा नहीं माना जा सकता। इसका अर्थ तो धर्म और ईश्वर में विश्वास के आधार पर ही जाना जा सकता है। संसार की कोई बाधा भक्त के विश्वास को, ईश्वर की आस्था को कम नहीं कर सकती। ऐसा धार्मिक महापुरुष ईश्वर को जानता है, फिर वह शुभ अशुभ का निर्णय नहीं करता। यहाँ श्री राम कृष्ण के इस कथन को उद्धृत किया जा सकता है, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव जानते हो क्या है, मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो। अध्याय 12 समाप्त।